जी
सूत्र का छुपा होना लाजिम है
जी।
अगर मैयत जो है एक एक जगह मैं गया, वहां पर वो मैयत को नहला रहे थे, मैंने वहां पे बड़े जोर से चीखा, मैंने कहा आप जिस तरीके से नहला रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी आपके मैयत की बेहुर्मती हो रही है। इस सिलसिले में हमारे
जी
क्या फरमाएं?
देखिए मैं अर्ज करता हूँ, हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये तहकीक की जाए कि सतर औरत क्या है। औरत यहां बमाने छुपाना है, ठीक है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु का मजहब और फतवा यह है, ये नाफ जिसको अरबी में सुर्रा कहते हैं, नाफ के नीचे से ये घुटने की जो सफेदी है ये सतरे औरत है। इसका छुपना आम हालात में भी फर्ज है, घर में भी अगर आप बैठे हैं तो फर्ज है, कहीं महफिल में इधर उधर कहीं भी बैठे हैं तो फर्ज है। हमारे यहां आपने देखा आजकल ये कि लोग उमूमन घर से बाहर निकल के चबूतरे पे बैठते हैं, जिसको मैं चूंकि मेमनों में रहता हूं ना इसलिए कुछ मेमनी जबान इस्तेमाल करूं, माजगर उसको ओटला कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हम ओटले पे बैठते हैं तो चड्डियां पहन करके बैठते हैं कि पूरी राने नजर आ रही हैं, घुटने नजर, ये तो हराम, ठीक है ना। अच्छा अब जब ये बताया मैंने कि ये जो आपका नाफ है जिसको हम नाव भी कहते हैं, इसको टुंडी भी कहते हैं, बड़ी कदीम उर्दू में इसको बोमी भी कहते थे, 300 साल पुरानी उर्दू में, तो ये इसका इस्तेसना है। अच्छा इमाम आजम अबू हनीफा ने इस हदीस से इसको इस्तेदलाल किया कि जब वो हजरत इमाम हसन या इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा को देखते, वो उस वक्त जवान हो गए थे, तो उसके बाद बड़े करीने सलीके से उनके शिकम से कमीज उठाते और उसकी उनकी नाफ को चूमते, बोसा देते। वो फरमाती कि क्या कर रहे हो? कहा जब तुम छोटे थे हुजूर की बारगाह में जब आते तो हुजूर आपसे ये कुर्ता उठा करके नाफ को बोसा देते थे, तो मैं भी आपको नाफ को बोसा देता हूं। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर नाफ सतरे औरत होता तो ना इमाम हसन उसको मकशूफ करते, ना उठाते, और ना सतरे औरत को अबू हुरैरा बोसा देते। ये दलील हमारे इमाम आजम अबू हनीफा की हदीस है। अच्छा अब जब मैयत को गुसल दिया जाए तो उमूमन यही होता है, जो नहलाने वाले हैं उनको ये सारे मसाइल मालूम होते हैं कि वो क्या करते हैं कि नहलाते वक्त नाफ से लेकर घुटने तक कपड़े से ढक देते मैयत को, और उसके बाद में कपड़े के दस्ताने बनाए जाते हैं, दस्ताने बनाने के बाद में उसकी शर्मगाह पर भी पानी डाला जाता है, उसको धोया जाता है, और उसको धोने के बाद में पूरा गुसल इस तरीके से दिया जाता है कि कोई जगह खाली ना रहे। इसमें कान और नाक जो है इसका इस्तेसना है, कानों में रुई लगा दी जाए, जिंदा आदमी के लिए तो जरूरी है कि अंदर तक पानी जाए, नाक के जो नरम हिस्सा है ये नथनों का यहां तक पानी जाए। हम लोग जब वजू या गुसल करते हैं तो खाली नाक को पानी में डुबो देते हैं, ये नहीं, बल्कि फरमाया गया कि जब गुसल खास करके जब करें तो जरा सा सांस को ऊपर खींच करके यहां तक पानी को पहुंचाए कि अंदर तक पानी जाए गुसल करने के बारे में। और अगर पानी वहां नहीं पहुंचा, खाली हमने नाक डुबो ली तो पानी अंदर तक नहीं गया तो गुसल नहीं हुआ, ये तो जिंदों के लिए। और मैयत में नाक में रुई रख दी जाए, उसकी वजह यह है कि गुसल के बाद में कभी कभी पानी अगर अंदर चला जाए तो फिर वो वापस निकलता है, उससे कफन जो है वो मुतासिर होता। तो जैसे जिंदों को नहलाते हैं फिर इस तरीके से मुर्दों को नहला दिया जाए। उमूमन ये तो आजकल गुसल देने वाले हजरात जो हैं तकरीबन मोहल्ले में मौजूद हैं, और टेलीफोन करके ही बुलाया जा सकता है, जो वेलफेयर का काम करने वाले लोग हैं उनके पास गुसल देने वाली और मर्द उसका तख्ता कफन ये सारा एहतमाम इंसराम होता। वरना अगर हम ये देखें कि किसी का इंतकाल हो जाए, अब मोहल्ले मोहल्ला लोग घूम रहे हैं मैयत को गुसल देना, अरे भाई ये कौन सा तुमने कंप्यूटर सही करने का मसला बनाया, जैसे जिंदा नहाते वैसे मैयत को नहला दो, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि बहुत डरते हैं लोग, अच्छा वो रोएंगे वो होगा सब होगा, मैयत के पास नहीं जाएंगे, क्या ऐसा ना हो कि पकड़ ले साथ ले जाए अपन, हाँ बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे, वो रोएंगे धोएंगे, कोई गुसल देने के लिए घर वाला तो तैयार ही नहीं होगा कि उसको गुसल दिया जाए, हालांकि उसको गुसल देना चाहिए। और ये अगर गुसल देने वाले लोग ना मिले तो फिर क्या होगा, फिर तो इकबाल का वो शेर याद आता है, आएंगे गसाल चीन से कफन जापान से, جب نہیں ہوگا تو غسل دینے والے کو چین سے بلائیں گے، کفن دینے والے کو جاپان سے، جیسے زندہ نہ تھا ویسے نہلا دے. تو اس وقت بھی ستر عورت کے قواعد کو ملحوظ رکھنا یہ بے حد ضروری ہے کہ میت کو کپڑے سے ستر عورت اس کا ڈھک دیا جائے اور اوپر سے پانی ڈالیں، اور جو غسل دینے والا ہے وہ صحیح طریقے سے میت کو غسل دے کہ ہر جگہ اس کے پانی پہنچ جائے. اور یہ احتیاط اس لیے برتی گئی کہ ایک اگر ابھی بھی آدمی اگر غسل کر کے انتقال ہوا تب بھی اس کو غسل دیا جائے گا، یہ نہیں کہ چونکہ اس کے غسل کرنے کے بعد انتقال ہوا. اور یہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی آدمی کو غسل جنابت لازم تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس غسل سے اس کا وہ غسل بھی اتر جائے گا. اگر غسل جنابت اس پہ واجب ہوگا تو وہ اس کا غسل جو ہے وہ اس سے اتر جائے گا. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جس کو ہم شہید کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ اصل شہید کون ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو غسل نہیں دیا جائے، اس کو اسی خون کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا کہ کل وہ اسی خون آلود کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کڑا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. ہاں اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ متحقق ہو جائے یہ بات، مثال کے طور پر اس پہ غسل جنابت واجب تھا کسی شہید پر اور وہ شہید ہو گیا، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اس میں مذہب اور فتویٰ یہ کہ ایسے شہید کو غسل دیا جائے گا کہ جو ناپاکی کی حالت میں جاں بحق ہوا تو اس کو غسل دیا جائے گا. عام جو شہید ہیں، واقعی وہ شرعی شہید ہے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی خون آلود کپڑوں میں اس کو کفن جو دے کر کے دفن کیا جائے گا. یہ تفصیل میں نے بتا دی تاکہ اس معاملے میں کوئی اور سوال پیدا نہ ہو، اس کی وضاحت ہو جائے. اور کوئی سا